एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई। इंसान में कोई फर्क नहीं, इंसानों में कोई फर्क नहीं, न कोई ऊंचा नीचा न कोई हानि न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई। कामों की खुशबू से, अच्छे कामों की खुशबू से अपने जीवन को तू महका दे। इंसानों में कोई फर्क नहीं, इंसानों में कोई फर्क नहीं, ना कोई ऊंचा नीचा न कोई न कोई।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें ग्रहण कर, हमें तेरे वचनों से आशीषित कर, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचनों को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरा सामर्थ्य के साथ तेरे वचनों को प्रस्तुत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रिय श्रोताओं, आज का संवाद का शीर्षक है सृष्टि का परमेश्वर। वैसे हमारा सृष्टिकर्ता किस प्रकार का परमेश्वर है? क्या इस प्रकार का एक अनंत श्रेष्ठ व्यक्ति हम पर रुचि रखता है? उसके ब्राह्मण के किसी दूर कोने में जीवन का बहुत छोटा सा बिंदु, पृथ्वी की सृष्टि करने के पश्चात क्या वह अन्य किसी बड़े एवं उन्नत कार्यों की ओर चला गया? वह एक परवाह करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का सृष्टि विवरण परमेश्वर से आरंभ होता है और मानव जाति तक पहुंचता है। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश एवं पृथ्वी की सृष्टि करके परमेश्वर मानव जाति के लिए एक उत्तम पर्यावरण तैयार कर रहा था। मानव जाति नर नारी उसकी उत्कृष्ट कृति थी। यह विवरण परमेश्वर को सृष्टि में दिलचस्पी लेने वाले के साथ साथ एक सावधान योजनाकार के रूप में भी प्रकट करता है। उसने उनके लिए एक विशेष उद्यान घर लगाया और उन्हें उसमें काम करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी। उसने मानव जाति की सृष्टि की ताकि वे उसके साथ एक संबंध बना सके। यह एक मजबूर या अस्वाभाविक संबंध नहीं होना था। उसने चुनने की स्वतंत्रता के साथ और उसकी सेवा करने की क्षमता के साथ उनकी सृष्टि की। सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन था? परमेश्वर के सभी सदस्य सृष्टि में शामिल थे। उत्पत्ति 1:2-26 में हम यह पाते हैं। हालांकि परमेश्वर का पुत्र पूर्व अस्तित्व मसीह सक्रिय प्रतिनिधि था। अपने सृष्टि विवरण के प्रस्तावना में मूसा ने लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उन शब्दों को याद करते हुए यहूना ने सृष्टि में मसीह की भूमिका को निर्दिष्ट किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहूना 1:1-3। तत्पश्चात उसी अनुच्छेद में यहूना बहुतायत से स्पष्ट करता है कि वह किसके विषय में लिख रहा है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया, यह हम पाते हैं यहूना 1:14 में। यीशु सृष्टिकर्ता था जिसके बोलने से पृथ्वी अस्तित्व में आई। इफिसियों 3:9, इब्रानियों 1:2 को भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन को हम पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। जब मसीह प्रेम पूर्वक आदम के ऊपर घुटने टेक कर उस प्रथम मानव के हाथों को आकार दे रहा था, तो वह जानता था कि किसी दिन यही मनुष्य उससे दुर्व्यवहार करेंगे एवं अंततः उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। एक तरह से सृष्टि और क्रूस का विलय हुआ, क्योंकि सृष्टिकर्ता मसीह को इस जगत की उत्पत्ति से घात कर दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 13:8, उसके दिव्य पूर्व ज्ञान ने उसे रोका नहीं। कलवरी के अशुभ बादल के नीचे मसीह ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, यह जानते हुए कि यह रचनात्मक कार्य उसे उसके जीवन की श्वास से वंचित करेगा। गहन प्रेम ही सृष्टि का आधार है। जो कुछ परमेश्वर करता है उसे प्रेम प्रेरित करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 4:8, उसने हमारी सृष्टि इसलिए केवल नहीं की कि हम उससे प्रेम कर सके, परंतु इसलिए कि हम भी हमसे प्रेम कर सके। उसके प्रेम ने सृष्टि द्वारा सबसे बड़ा उपहार जो वह हमें दे सकता था देने के लिए प्रभावित किया, वह है जीवन। क्या बाइबल ने फिर कुछ संकेत दिया कि किस उद्देश्य के लिए ब्राह्मण और उसके निवासी मौजूद हैं? परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, अपने सृष्टि कार्यों के माध्यम से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो बोली है और ना तो कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। भजन संहिता 19:1-4। परमेश्वर की महिमा का ऐसा प्रदर्शन क्यों? प्रकृति परमेश्वर के साक्षी के रूप में कार्य करती है। वह चाहता है कि उसके सृष्टि कार्य व्यक्तियों को उनके सृष्टिकर्ता की ओर इशारा करे, क्योंकि जब से संसार की सृष्टि हुई है, पौलुस कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि लोग निरुत्तर हैं। रोमियो 1:20। जैसे जैसे हम प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं, हम परमेश्वर के गुणों के विषय में अधिक सीखते हैं। गुण जिन्हें हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हुए हम उसकी महिमा करते हैं, इस प्रकार उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए हम रचे गए हैं। संसार आबाद करने के लिए बनाया गया था। सृष्टिकर्ता नहीं चाहता था कि पृथ्वी एक खाली सुनसान ग्रह रहे, उसे आबाद होना था। यशायाह 45:8। जब प्रथम पुरुष को साथी की आवश्यकता महसूस हुई, तब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। उत्पत्ति 2:20 और 1 कुरिन्थियों 11:9 में हम यह पाते हैं। इस प्रकार उसने विवाह संस्थान की स्थापना की। उत्पत्ति 2:22-25 और सृष्टिकर्ता ने उस जोड़े को न केवल इस नए सृष्टि किए गए संसार के ऊपर प्रभुत्व दिया, परंतु इन शब्दों के साथ, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 1:28 उसने उन्हें सृष्टि में भाग लेने का विशेष अधिकार दिया। लोग सृष्टि के सिद्धांत की उपेक्षा करने के लिए ललचाते हैं। कौन परवाह करता है? वे पूछते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि कैसे की। हम जो जानना चाहते हैं वह यह कि स्वर कैसे जाए। फिर भी एक दिव्य सृष्टि का सिद्धांत मसीह एवं बाइबल की अध्यात्म विद्या का अति आवश्यक आधार बनाता है। बाइबल की कई मौलिक अवधारणाएं दिव्य सृष्टि से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में यह ज्ञान कि परमेश्वर ने किस प्रकार आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अंततः एक व्यक्ति का नए आकाश और पृथ्वी की ओर राह को खोजने में सहायक हो सकता है, जिसके विषय में यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है, तब फिर सृष्टि के सिद्धांत में कुछ निहितार्थ क्या है? पहला, मूर्ति पूजा की विषहर औषधि। परमेश्वर की रचनाकारिता उसे अन्य देवताओं से अलग करती है। 1 इतिहास 16:24-27, भजन संहिता 96:5-6, यशायाह 40:18-26 तथा 42:5-9 और 44। हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जिसने हमें बनाया है, और उन देवताओं की नहीं जिन्हें हमने बनाया है। उसकी रचनाकारिता के कारण वह हमारी पूर्ण निष्ठा के योग्य है। कोई भी संबंध जो इस निष्ठा के साथ हस्तक्षेप करता है वह मूर्ति पूजा है और दिव्य न्याय के अधीन है। इसलिए सृष्टिकर्ता के प्रति निष्ठा जीवन या मृत्यु का मामला है। दूसरा, सच्ची आराधना का आधार। परमेश्वर के प्रति हमारी आराधना इस तत्व पर आधारित है कि वह हमारा सृष्टिकर्ता है और हम उसकी सृष्टि हैं। भजन संहिता 95:6 इस विषय की महत्वता का संकेत इसका उस पुकार में शामिल होने से मिलता है जिसमें मसीह के आगमन के ठीक पहले पृथ्वीवासियों को आदेश दिया गया है कि उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जल के स्रोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14:7। तीसरा, सबत सृष्टि का एक स्मारक है। परमेश्वर सातवें दिन की सबत के रूप में स्थापना इसलिए कि ताकि हमें एक साप्ताहिक स्मरण हो कि हम उसके बनाए हुए प्राणी हैं। सबत अनुग्रह का एक उपहार था, यह बताने के लिए नहीं कि हमने क्या किया है, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है। उसने विशेष रूप से इस दिन को आशीषित किया एवं इसे पवित्र ठहराया ताकि हम यह कभी ना भूलें कि काम के अतिरिक्त जीवन में सृष्टिकर्ता के साथ मेल, विश्राम एवं परमेश्वर के शानदार सृष्टि कार्यों का उत्सव शामिल होना चाहिए। उत्पत्ति 2:2-3। इसके महत्व पर जोर देने के लिए सृष्टिकर्ता ने अपनी रचनात्मक शक्ति के इस पवित्र स्मारक को याद कराने के आदेश को एक अनंत चिन्ह और सृष्टि के प्रतीक के रूप में नैतिक व्यवस्था के केंद्र में रखा। इसे हम पाते हैं निर्गमन 20:8-11, 31:13-17 और एजेकेल 20:20 में। चौथा, विवाह एक दिव्य संस्थान है। सृष्टि के सप्ताह के दौरान परमेश्वर ने एक दिव्य संस्था के रूप में विवाह की स्थापना की। उसने चाहा कि दो व्यक्तियों के बीच यह पवित्र मिलन कभी भी ना टूटे। पुरुष अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:24 में और मरकुस 10:9 में भी। पांचवा, सच्चे आत्ममूल्य का आधार। सृष्टि का विवरण स्पष्ट करता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने थे। यह समझ व्यक्ति के मूल्य की एक सच्ची अवधारणा प्रदान करती है। यह खुद के निम्न अनुमान के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती है। वास्तव में सृष्टि में हमें एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। सृष्टिकर्ता के साथ निरंतर संपर्क में रहने का विशेष अधिकार और उसके समान बनने का एक सुअवसर। छठा, सच्चे भाईचारे का आधार। परमेश्वर की रचनाकारिता उसके पितृत्व को स्थापित करती है। मलाकी 2:10 और संपूर्ण मानवता के भाईचारे को प्रकट करती है। वह हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। जाति, शिक्षा, पद, लिंग के बावजूद सभी परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। यदि समझकर लागू की जाए तो यह अवधारणा जातिवाद, कट्टरता और किसी भी अन्य प्रकार के भेदभाव को हटा देगी। सातवां, व्यक्तिगत भंडारीपन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है, हम उसके हैं। इस तत्व का तात्पर्य यह है कि हमारे ऊपर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का निष्ठावान भंडारी होने की एक पवित्र जिम्मेवारी है। सृष्टिकर्ता से पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करना अकृतज्ञता का प्रतीक है। आठवां, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व। सृष्टि में परमेश्वर ने प्रथम पुरुष एवं स्त्री को वाटिका में रखा। उत्पत्ति 2:8 में हम यह पाते हैं। उन्हें भूमि पर खेती करनी थी एवं संपूर्ण जीव जंतुओं पर प्रभुता करनी थी। उत्पत्ति 1:28 यह इंकित करता है कि हमारे पास अपने पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने की दिव्य जिम्मेदारी है। नौवां, शारीरिक श्रम की गरिमा। सृष्टिकर्ता ने आदम से कहा कि वह अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। उत्पत्ति 2:15। मानव जाति को एक आदर्श दुनिया में उपयोगी व्यवसाय के सौंपने से शारीरिक श्रम की गरिमा का पता चलता है। 10. भौतिक ब्रह्मांड का मूल्य। सृष्टि के प्रत्येक चरण में परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ उसने बनाया था वह अच्छा था। उत्पत्ति 1:10, 12, 17, 21-25। और जब उसने सृष्टि समाप्त की, उसने जो कुछ बनाया था सबको देखा और कहा, बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति 1:31। इस प्रकार सृष्टि की हुई चीजें आंतरिक रूप से बुरी नहीं परंतु अच्छी है। 11. निराशावाद, अकेलापन एवं व्यर्थता के लिए उपाय। सृष्टि का विवरण यह प्रकट करता है कि संयोगवश या विकास के कारण अस्तित्व में आने की उपेक्षा प्रत्येक वस्तु की सृष्टि एक उद्देश्य के साथ की गई। मानव जाति की सृष्टि स्वयं सृष्टिकर्ता के साथ एक शाश्वत संबंध के लिए की गई। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम एक उद्देश्य के लिए रचे गए हैं, तो जीवन सार्थक और समृद्ध हो जाता है और दर्दनाक खालीपन एवं असंतोष, जिसे अनेक व्यक्त करते हैं, गायब हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम उनकी जगह ले लेता है। 12. परमेश्वर की व्यवस्था की पवित्रता। परमेश्वर की व्यवस्था पतन के पूर्व अस्तित्व में थी। उसकी निष्पाप अवस्था में मानव जाति इसके अधीन थी। यह आत्म विनाश के खिलाफ चेतावनी देने, स्वतंत्रता की सीमाओं को प्रकट करने, उत्पत्ति 2:17, और परमेश्वर के राज्य के लोगों की खुशी और शांति की रक्षा करने के लिए थी। उत्पत्ति 3:22-24। 13. जीवन की पवित्रता। जीवन का सृष्टिकर्ता मानव जीवन के निर्माण में निरंतर शामिल रहता है, जिससे जीवन पवित्र बन जाता है। दाऊद उसके जन्म में शामिल होने के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। भजन संहिता 139:13-16। यशया में प्रभु स्वयं को वह जो तुझे गर्व ही से बनाता आया है के रूप में दर्शाता है। यशया 44:24। क्योंकि जीवन परमेश्वर का वरदान है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। वास्तव में हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम इसकी सुरक्षा करें। सृष्टि में मसीह ने आज्ञा दी और वह तुरंत पूरा हो गया। रूपांतरण की लंबी अवधि के बजाय उसका शक्तिशाली शब्द सृष्टि के लिए जिम्मेदार था। 6 दिनों में उसने संपूर्ण सृष्टि की। फिर भी 6 दिन क्यों लगे? क्या वह सिर्फ एक बार नहीं बोल सकता था और एक पल में सब कुछ अस्तित्व में नहीं ला सकता था? शायद उसने उन 6 दिनों में हमारे ग्रह को विकसित करने का आनंद लिया होगा, या शायद इस विस्तृत समय का वास्ता उस महत्व से है जो उसने हर रची गई सृष्टि को दिया, या 7 दिनों के सप्ताह के परिश्रम और विश्राम के चक्र को एक उदाहरण के रूप में प्रकट करने की इच्छा से जो वह मनुष्य के लिए चाहता था। लेकिन मसीह उद्धार को केवल बोलकर अस्तित्व में नहीं लाता है, लोगों को बचाने की प्रक्रिया हजारों वर्षों से भी अधिक अस्तित्व में है। इसमें पुरानी और नई वाचाएं पृथ्वी पर मसीह के 335 वर्ष और बाद में लगभग 2000 वर्ष स्वर्गीय मध्यस्थता शामिल हैं। सृष्टि के लिए लगा समय और पुनः सृष्टि में लग रहा समय के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि परमेश्वर की गतिविधियां हमेशा मानव जाति के हित में होती है। मसीह दूसरे आदम के रूप में आया, मानव जाति के लिए नई शुरुआत। इसे हम पाते हैं रोमियो 5 अध्याय में। वह मसीह के उत्तम दिव्य हाथ थे जिन्होंने पहले मनुष्य को जीवन दिया और यह मसीह के हाथ ही हैं, छीदे और खून से सने, जो मनुष्य को अनंत जीवन देंगे। परमेश्वर के स्वरूप में बने, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया है। सृष्टि के सर्वोच्च कार्य के रूप में परमेश्वर हम में से प्रत्येक को उसके साथ मेल में बने रहने के लिए आमंत्रित करता है। प्रतिदिन मसीह की पुनर्जीवित करने की शक्ति को मांगें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसकी छवि को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें ग्रहण कर और हमें स्वच्छ और पवित्र बना, हमें तेरे राज के लिए तैयार कर कि हम तेरे संग रह सकते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें बनाया है, हमें मदद कर पिता कि हम तेरे साथ तेरे संग रहें, पवित्र आत्मा का आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।